भारत के तथा विदेश के भिन्न भिन्न स्थानों से विशेष अपने प्यारे मधुबन में शांतिवन में खास दिन मनाने के लिए आए हैं। कौन सा दिन है? बाबा ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं इस दिन के। स्मृति दिवस भी है, समर्थी दिवस भी है, स्मृति दिवस इसलिए कि हम सब के अति प्रिय ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर अपने योग बल से अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर अव्यक्त रूप धारण किया था। और फिर इसके साथ साथ जैसे आपने दो तीन दिन पहले अव्यक्त मुरली सुनी होगी, अव्यक्त होने से पहले दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ देकर अपनी सारी पावर्स कहें, शक्तियां कहें, उनको ट्रांसफर की। पहले जरूर बाबा ने उनको इस योग्य समझा था, बाबा की परख शक्ति लौकिक में भी और अलौकिक जीवन में भी दोनों में नंबर वन थी। और आज हम सब विशेष सभी भाई बहने ऐसे शुभ दिन पर यहां पधारे हैं। हर एक दिन का अपना महत्व है। आज के दिन सारे ईश्वरी परिवार के भाई बहनों के मन में एक ही बात अमृत वेले से, जैसे संदेश में भी सुना आपने, तो सभी के दिल में एक ही बात कहने में भी जरूरत नहीं है, दिल से ही निकलता है, प्यार से कहते हैं सभी, आज बाबा का स्मृति दिवस है। बाबा का मिसाल हम सबके सामने विशेष आज के दिन स्मृति दिवस पर, अथवा यूं कहें कि जनवरी मास, पहली जनवरी से लेकर के स्मृति मास के रूप में मनाया जा रहा है। आप मुरली का जब समापन होता है, वरदान मिल जाता है, लास्ट में फिर हर एक दिन के लिए अपने संकल्पों में क्या रखें ताकि हमारा जीवन भी बाबा की तरह तपस्या स्वरूप बन जाए। आज जब हम बाप दादा की याद में अव्यक्ति दिवस मनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की जीवन यात्रा सामने आती है। आजीवन उन्होंने एक तो लौकिक रीत से भी ऐसा पुरुषार्थ किया जो समाज के अंदर बहुत ऊंचा नाम था उनका। लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक लगन आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आध्यात्मिक सोच के बारे में, आध्यात्मिक चिंतन के बारे में विशेष उन्होंने खोज भी काफी की, अभ्यास भी किया। और जब से बाबा उनको मिल गए, बाबा को बाबा मिल गए, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिल गए, तो एक प्रकार से एक निर्णायक पल आ गया उनके जीवन में। सतगुरु मिला, सच्चा सतगुरु जिसको कहें, वो स्वयं जब मिल गया तो सतगुरु की श्रीमत क्या थी, उनकी श्रीमत से कितने श्रेष्ठ बन सकते थे, उसके लिए क्या उनको करना था, वो सारी बातें स्पष्ट हो गई उनको। और न सिर्फ वो निमित्त बने एक नई शुरुआत करने के लिए इस संसार के अंदर, एक नई शुरुआत कि बहनों और माताओं को निमित्त बनाकर एक आध्यात्मिक आंदोलन कहो, उसकी शुरुआत बाबा ने की। आज जब कोई संत महात्मा इस बात के लिए सुनते हैं, देखते हैं, पहले इतना आश्चर्यवत नहीं होते थे, आज बहुत उनको आश्चर्य होता है कि ब्रह्मा बाबा ने जो 80 साल पहले दिव्य साक्षात्कार के द्वारा इस विश्व परिवर्तन के लिए रोड मैप कहो वो देखा था, उसके आधार से ओम मंडली की शुरुआत हुई, जिसका नाम बाद में ऑफिशियली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हुआ। लोग आश्चर्यवत होते थे कि ये कैसा ईश्वरी विश्वविद्यालय है, एक छोटे से मकान में या छोटे से एक कमरे में ही। जैसे मुरली में एक दो दिन पहले भी था, कल भी था, कि ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, एक कमरे में भी ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, लेकिन बाबा को शुरू से लेकर के न केवल भारत के लिए बल्कि सारे विश्व के लिए बहुत क्लियर था कि सारे विश्व में शिव बाबा का संदेश पहुंचेगा और सभी को एक नई दिशा सोचने की मिलेगी। जैसे जैसे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से संदेश पहुंचता गया, 80 साल के बाद आज के दिन आप सोचिए कि आज ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस न केवल आबू में मनाया जा रहा है, बल्कि विश्व के कोने कोने में विशेष तपस्या के द्वारा सभी भाई बहने बाप दादा को यूं कहें कि अपने याद के, अपने प्यार के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। स्मृति दिवस बाबा ने इसको नाम दिया, ये समर्थि दिवस। हम आत्माओं को भी समर्थ बनाने का दिवस है। एक ऐसा स्वाभाविक मानसिक संतुलन बन जाता है बाबा की याद में, सहज रीति से मन लगा रहता है। और जब ऐसा संगठन होता है जहां पर इतने हजारों भाई बहने आज भी शांति वन के अंदर 24,000 भाई बहन हैं और सभी सेंटर्स के भाई बहने अगर उनको भी काउंट करें साथ में तो लाखों में हैं। सारे विश्व के ग्लोब के ऊपर लाखों भाई बहने सुबह से लेकर के 3:30 बजे से, 4 बजे से, कोई 2 बजे से, हरेक के मन में एक ही बात कि आज हमारे अति प्रिय ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है और आज के दिन खास बाबा से हम विशेष अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा से वरदान प्राप्त करेंगे और वरदान मांगने से नहीं मिलता है। उनके हम योग्य बच्चे बनते हैं, योग्य संतान बनते हैं तो वर्षे के रूप में स्वतः ही मिल जाता है। तो बाबा से वरदान प्राप्त करने का भी आज दिवस है और फिर इसके साथ में पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता लाने का भी विशेष बाबा को सामने रखते हुए, जैसे बाबा स्वयं कहते थे, बच्चे आप तो युवा हो, आप जो कर सकते हो, बाबा बुजुर्ग है, बड़ी उम्र में है, बाबा इतना कुछ ना भी कर सके लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा ने करके दिखाया कि ब्रह्मा बाबा बड़ी उम्र में होते भी युवाओं से भी ज्यादा एक्टिव रहते थे। क्योंकि बाबा के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था? एक तो सारे विश्व के अंदर अनेकानेक आत्माओं के दिल में शिव बाबा की याद का झंडा लहराना है। दूसरा, जब तक ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, शिव बाबा का ज्ञान नहीं है, तब तक उनके साथ मन लगाना भी मुश्किल है। तो बाबा ने स्वयं जिस चीज का अभ्यास किया वो अभ्यास हम बच्चों के सामने प्रस्तुत भी किया और उसके बारे में आप देखेंगे हरेक मुरली के अंदर इशारा मिलता है। जितनी भी मुरलियां आप देख लो, हर एक के अंदर एक ही बात आएगी, बच्चे बाकी सब बातें ठीक हैं फिर भी देश सहित देह के संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो और शिव बाबा के साथ मन लगाओ, शिव बाबा को याद करो। याद के ऊपर बहुत बल बाबा देते थे। जैसे आप हिस्ट्री में सुनते हैं, रातों रात भी याद के प्रोग्राम रहते थे, लेकिन बाबा ने एक बात हम सबके सामने बहुत प्रैक्टिकल अपने जीवन से दिखाई कि चलते फिरते, उठते बैठते स्वाभाविक रूप से हमारा मन शिव बाबा के साथ लगा रहे। इसलिए एक शब्द ऐसा दे दिया बाबा ने, याद की यात्रा। यात्रा चलने से होती है, तो चलते फिरते हैं तो आप यात्रा कर रहे हैं जैसे, लेकिन चलते हुए बैठे हुए किसी समय भी मन को शिव बाबा के साथ लगाने का अभ्यास। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं वो करके दिखाया और वो करते करते प्रैक्टिकल, हमने जब से बाबा को देखा कैसे उस अभ्यास के अंदर भी नवीनता, हर दिन बाबा नवीनता कैसे ला रहे थे। एक एक दिन में कुछ नया कुछ नया कुछ नया देखने में आता था, और वो नयापन आप देखेंगे जो साकार मुरलियां हैं, साकार मुरलियों के अंदर वो चीजें आपको मिलेंगी। बाबा का एक सबसे ऊंचा लक्ष्य निरंतर योगीपन, निरंतर याद का अभ्यास, जैसे कल के मुरली में था, अगर बच्चे इस अभ्यास में रहते हैं, रात को भी अगर जागृत रहते हैं तो थकान नहीं होगी। और बाबा अपने लिए कहते थे, देखो बच्चे ये तो बाबा बुजुर्ग है, बुजुर्ग बाबा को थकान होनी चाहिए, लेकिन बाबा को इतना आनंद आता है उस याद में। और देखा गया कि जैसे जैसे बाबा ने वो अभ्यास अधिक से अधिक किया, बाबा का स्वरूप फरिश्तापन में चेंज होता देखने में आता था। साकार में होते भी फरिश्ता स्वरूप सामने नजर आता था। भाई बहने कई बार ऐसा अनुभव करते थे, अभी अभी बाबा को यहां देख रहे हैं और अभी अभी जैसे बाबा यहां से गुम है, अभी अभी उनको साकार में देख रहे हैं, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप में देख रहे हैं। शुरू शुरू में तो और भी इससे आगे, बाबा को देखते देखते श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। वो राज तो बाबा ने बाद में बताए कि ये आत्मा वही है जो सत्ययुग में श्री कृष्ण है, 84 में जन्म में आते आते फिर आकर के शिव बाबा का माध्यम बनते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम पड़ता है। तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सो ब्रह्मा, उस बात का बाबा को अंदर ही अंदर बहुत, एक तरफ नशा भी था, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी ध्यान में थी कि उसके लिए कितना योग युक्त, कितना स्पष्ट और एक एग्जाम्पल रूप में सबके सामने रहना है। तो बाबा ने प्रैक्टिकल अपने जीवन से हम बच्चों के लिए एक विरासत ऐसी छोड़ दी। आज बाबा के समय से जो नियम बनाए गए, जो धारणाएं बनाई गई, जो लक्ष्य दिए गए, वो हम सबको बहुत सहज रीति, स्पष्ट रीति अपने सामने रहता है। और बाबा की एक एक बात को जब लेते हैं, आप सोचिए 700 करोड़ से ऊपर इस सृष्टि पर आत्माएं हैं, और बाबा का कहना है कोई एक आत्मा भी ना रह जाए जिसको बाबा का संदेश ना पहुंचे कि भगवान इस धरा पर आए हैं, उनसे अपना वर्षा ले लें ये संदेश सब तक पहुंचना जरूरी है और उसके लिए बाबा प्रैक्टिकली साकार बाबा कितने तरीकों से हम बच्चों को सिखाते रहे। कभी एक चीज छपवाएंगे, कभी दूसरी छपवाएंगे, कभी तीसरी छपवाएंगे, चित्र नए नए बनवाएंगे, सेंटर्स को नए नए तरीके से कैसे चलाना वो सिखाएंगे। तो बाबा की एक एक बात को जब सामने लाते हैं तो एक तरफ बाबा इतना महान, इतना श्रेष्ठ जीवन उनका, और उसके साथ में प्रैक्टिकली इस संसार को बदलने के लिए जन जन तक बाबा का संदेश पहुंच जाए उसके लिए कितनी युक्तियां बाबा ने बताई। हम लोग आश्चर्यवत होते थे, बाबा माउंट आबू में रहते हैं या मानो कभी बाहर भी जाते थे, बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो कहीं पर भी वो हुए रहते यही बात उनके मन में आती थी कि ये ईश्वरी ज्ञान हर एक तक पहुंचे कैसे, और उसके लिए और कोई लक्ष्य नहीं, ज्ञान से सबको सुजाग किया जाए, जागृत किया जाए, क्योंकि इस समय घोर अंधकार है, कलयुग का ऐसा समय है, सभी जानते हैं, दुनिया भर की न्यूज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और ये निशानियां हैं कलयुग की। और फिर बाबा को उमंग रहता था कि अभी हम कलयुग में नहीं हैं, हम सभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा समय है जब स्वयं पिता परमात्मा हम बच्चों से इस धरा पर आकर मिलते हैं। बाबा की वाणी में बहुत स्पष्ट कि सत्युग में शिव बाबा नहीं आते हैं, स्थापना जरूर उसकी करते हैं लेकिन सत्युग में आते नहीं हैं, क्योंकि वो इन बातों से न्यारे हैं, सुख और दुख से न्यारे रहते हैं। न सत्युग में आते, न त्रेता में आते, न द्वापुर में आते, न कलयुग में आते। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा ने उसको खास अंडरलाइन कराया कि सिर्फ संगम नहीं कहना, संगम तो नदियों का भी है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग, जब फिर से पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाबा ने फिर से ये सहज राज योग की जो शिक्षा दी वो किसी भी शास्त्र में नहीं है। विशेष रूप जो है बाबा का कि बच्चों को कोई कष्ट भी ना हो, पर इसके साथ साथ हर एक का समय जो है वो यथार्थ रीति बिताएं और उससे हर एक का भाग्य बने। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? भगवान सबका भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता भी है और फिर उसके साथ साथ में प्यार का सागर भी है। सभी बाबा से जब मिलन मनाते हैं तो बाबा का कौन सा रूप देखते हैं? उस समय कौन सा रूप देखते हैं? और बातें बाद में आती हैं, शिक्षा बाद में आती है, पहले तो बाबा अपने प्यार का स्वरूप ही बच्चों के साथ उसी का स्पष्टीकरण करते रहते हैं। और भक्ति मार्ग में भी उन्होंने गीत बना दिए कि तू प्यार का सागर है। वो कहते हैं हम एक बूंद के प्यासे हैं, अभी आप क्या कहेंगे? एक बूंद के प्यासे हैं? नहीं, सागर ही आपको मिल गया, अभी एक बूंद की जरूरत नहीं है। तो बाबा का मिलना, इसके अंदर कितने राज हैं। ब्रह्मा बाबा निमित्त बने तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को धीरे धीरे ऐसा उन्नत किया, इतना श्रेष्ठ बनाया, जो प्रैक्टिकल सभी दैवी गुण बाबा के हर कदम में नजर आते थे। जितनी भी दिव्यता बाबा के जीवन में देखने में आती थी, अन्य संत महात्माओं से भी दिव्यता थोड़ी बहुत तो दिखती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के कदम कदम पे ऐसी दिव्य, ऐसी श्रेष्ठ, ऐसी सुखद बातें मिलती थी। बाबा की दृष्टि, दृष्टि ही कमाल कर देती थी। कहने में आता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यही कहते हैं ना। किसकी दृष्टि? हमारी दृष्टि से सृष्टि नहीं बनती है। जब तक ज्ञान और योग में ठीक से नहीं हमने अपने आप को डाला तो हमारी दृष्टि में वो पावनता नहीं आती। लेकिन ब्रह्मा बाबा की दृष्टि, प्रैक्टिकल देखा कि जिस किसी को भी बाबा ने अगर दृष्टि दी, उसका जीवन धन्य धन्य बन गया, पावन बन गया उसका जीवन। अनेकानेक भाई बहनों ने जिन्होंने बाबा से पालना प्राप्त की थी वो अपने अनुभव सुनाते हैं। बस बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने दो शब्द बोले, तब से मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। बाबा की कई सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें देखी थी। एक एक बच्चे को, जैसे दादी प्रकाशमणि जी से किसी ने पूछा था आपके फॉलोअर कितने हैं, तो दादी जी ने कहा कि मेरा तो फॉलोअर कोई भी नहीं है, मेरे तो सभी भाई बहने हैं। यहां फॉलोअर्स नहीं होते हैं, यहां बाबा के सब बच्चे हैं। तो बाबा हर एक को उसी नजर से देखते थे, ब्रह्मा बाबा। कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, शहर का रहने वाला हो, गांव का रहने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव की माताएं हो, कहां कहां से आते थे बाबा के पास, लेकिन सभी को उसी उच्च नजर से देखते थे कि ये मेरे होवनहार सत्युगी राजकुमारी राजकुमार बच्चे हैं। इस नजर से बाबा देखते थे और उसके कारण हरेक को अपने सोमान में सहज स्थित कर देते। सबसे बड़ी बात तो यही है, भक्ति मार्ग में जिस तरह से प्रार्थनाएं करते रहे तो अपना सोमान खो बैठे थे, और बाबा ने इस ज्ञान मार्ग में हम बच्चों को सोमान धारी बना दिया, श्रेष्ठ आसन पर बिठा दिया। श्रेष्ठ आसन बाबा का दिल तख्त, नैनों में बिठा दिया कि आप मेरे नैनों के नूरे रतन हो। मेरे पास वो चिट्ठी अभी नहीं है, लेकिन पहली पहली चिट्ठी में बाबा ने हमें लिखा था, बाप दादा के नैनों के नूरे रतन निर्वैर शेर प्रति, ऐसी चिट्ठी बाबा ने लिखी। तो ये एक बात आज के दिन खास, जब हम ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस की बात कर रहे हैं, तो स्मृति दिवस पर बाबा की इतनी बातें सामने आती हैं, लेकिन उसमें से मुख्य बात जो कि बाबा ने जिस तरह से अपने जीवन को एक तरफ पूरा ही विश्व की सेवा में लगाया, दूसरी तरफ अपने जीवन को इतना उच्च बनाया कि सर्वगुण संपन्न बन गए, 16 कला संपूर्ण बन गए, तो हम बच्चे भी उनके, बाबा कहते थे फॉलो फादर, मदर एंड फादर दोनों के लिए कहते थे, तो फॉलो फादर क्या करें, हम बच्चे भी उनके कदम पे कदम क्या रखें, यानी तो वही बात करनी है जो बाबा ने हम सबको करके दिखाई कि अपने जीवन में ज्ञानी तो आत्मा बनकर के हम हर कदम उठाएं और उसके साथ साथ योग युक्त होकर के बहुत शालीनता से, बहुत प्रेम से, जैसे बाबा ने हर बच्चे को प्यार दिया, छोटे हों बड़े हों बच्चे हों सभी को प्यार दिया, तो वो प्यार का सागर है, तो हम बच्चे कौन हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, तो हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम कभी भी किसी से रफ डफ बात ना करें, बहुत प्यार से बात करें, बहुत शालीनता से बात करें। इतने बड़े बुजुर्ग बाबा, ब्रह्मा बाबा, लेकिन क्या कहते थे, मुरली के अंदर भी शब्द आते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, सुना है आपने, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, तो बाबा सबका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर, तो हम क्या हुए, फॉलो फादर करना है तो हम भी तो बाबा की तरह अपने आप को समझें कि हम भी संसार में सबके सर्वेंट हैं, सेवाधारी हैं। ऐसी जब भावना रखेंगे, ऐसी जब भावना रखेंगे तो बाबा की जो आश थी, ब्रह्मा बाबा की भी आश थी, शिव बाबा का तो आदेश था कि सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए पूरा तन मन धन लगाना है इसमें, तो वो प्रैक्टिकल में अब सिद्ध करना है कि हम कोई भी, हमारे एक तो श्वास उसी में जाए और हमारी एनर्जी जो है वो पूरी विश्व परिवर्तन में जाए, और ब्रह्मा बाबा के समान हम भी फरिश्ता स्वरूप तक पहुंचे। फरिश्ता स्वरूप के लिए क्या कहते हैं, फरिश्तों के पांव इस धरती पर नहीं पड़ते हैं, सुना है आपने, तो ऐसी ऊंची भावना और ऐसी ऊंची स्मृति रहे कि हम दूसरों को भी फरिश्ता स्वरूप में ही देखते रहें और खुद को भी फरिश्ता स्वरूप में देखते रहें, तो कहां विराजते होंगे, फिर कहां विराजेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ ही फरिश्ता स्वरूप बन करके हर पल अपना बिताएंगे, सदा लाइट रहेंगे, लाइट की दुनिया में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे, कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा जो आपको थोड़ी सी भी टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, जिसके कारण आपको नींद ना आए, ऐसा नहीं होगा फिर, लेकिन बिना अभ्यास के नहीं होता है। बाबा का मिसाल यही है कि बाबा ने स्वयं प्रैक्टिस की और हम बच्चों को अपने अनुभव के आधार से एक एक बात सिखाई है। मुरली के एक एक लाइन को आप देखिए तो वो बाबा के अपने निजी अनुभव के आधार से सारी बातें हैं। शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य उसमें हैं, लेकिन जहां जहां भी अनुभव की बात है वो सारी प्रैक्टिकली बाबा ने खुद करके अनुभव करके फिर हम बच्चों के कल्याण अर्थ हम बच्चों के साथ वो बातें की हैं। तो इतना अपने ऊपर अटेंशन हम रखें, स्मृति दिवस मनाने का भाव ही ये है कि बाबा की ऐसी बातों को स्मृति में लाएं जिनसे हमारा जीवन भी बाप समान बन जाए। बाप समान जीवन, बाप समान की बातें तो बहुत हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात है तपस्या की बात। सुना भी होगा आपने, प्रैक्टिकल भी देखा हमने कि बाबा अपने जीवन के अंतिम दो तीन साल जो थे 1966 ऑनवर्ड्स 1966, 67, 68 वो दो तीन वर्ष बाबा बहुत कम बोलते थे, मुरली के सिवा बाकी बातचीत उनकी बहुत सीमित होती थी। हम बच्चे बाबा के पास जाते थे सेवा समाचार आज सुनाने के लिए, तो बाबा थोड़ा सा सुन के कहते थे बच्चे बाबा समझ गए। क्यों? बाबा ने उस समय अपना एक लक्ष्य ऐसा रखा हुआ था कि भले ही बाबा निरंतर याद में अपने मन को रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से 24 घंटे में से 8 घंटे बाबा को तपस्या करनी है। तो वो 8 घंटे की तपस्या का लक्ष्य हम बच्चों को भी उन्होंने दिया है कि जब हम 8 घंटे तपस्या करेंगे सारे दिन में, एक साथ नहीं होंगी, थोड़ी थोड़ी करके भी 8 घंटे जब करेंगे तो कर्मातीत स्टेज नजदीक आएगी, और कर्माती स्टेज नहीं आएगी तो फिर आप जानते हैं कि फिर थोड़ा क्या होगा, पश्चाताप होगा। तो कर्माती स्टेज का मतलब ये नहीं है एकदम से शरीर छोड़ने की बात आ जाती है, लेकिन कर्माती स्टेज का भाव ही है कि हम अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दें कि कोई कर्म बंधन इस दुनिया का हमें खींच ना सके, बंधन में ना आए हम, और हमारे मन में भी संकल्प में भी ऐसी कोई बात न हो। और वो तभी हो सकती है जब ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखें, ब्रह्मा बाबा की तरह तपस्या करें, और उस तपस्या के फलस्वरूप अपने प्रकंपन जो हैं वो सारे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य रखें। जैसे बाबा के महावाक्यों में अभी कुछ दिन से आप सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि जब आप अच्छी तरह से तपस्या करते हैं, विशेष अमृत वेले का योग करते हैं, तो उस समय आपके प्रकंपन सारी दुनिया में पहुंचते हैं। तो आज के दिन विशेष ये बात अपने दिल में पक्की करें कि हम निमित्त बने और हम सारे विश्व को, सारे विश्व की जो भी वायुमंडल है उसको पावन बनाने के लिए, उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, उसको दिव्य बनाने के लिए हमें निमित्त बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त बने और वो निमित्त बने तो हम बच्चों को आज ये मौका मिला है, और हम बच्चे निमित्त बनेंगे तो संसार में जो अभी भी रहे हुए हमारे भाई बहने उन तक भी ये बात पहुंचेगी। तो सभी इस तरह का विशेष लक्ष्य रख करके तपस्या में अपना मन लगाएं और कर्माती स्टेज को पाने का लक्ष्य रखें। कर्मों के बंधन में अगर रहेंगे, कर्म बंधन के कारण फिर कभी शरीर छोड़ेंगे तो फिर वापस कलयुग में आके फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ चलेंगे आप? हाँ, वापस कलयुग में आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। तो सीधा जाएं तो बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में जाएं, फिर उसके बाद परम धाम में जाएं, परम धाम से कहाँ आएंगे, वापस आकर के अपनी सत्युगी दैवी राजधानी में राज करें, ऐसा लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का दिन आज विशेष दिन है, जो वरदान बाबा कहते हैं आज के दिन चाहे वो मिल सकते हैं। वरदान मिलने का भाव यही है कि बाबा की दी हुई शिक्षा को जीवन में ढालें, बाबा की तरह तपस्वी बन जाएं और अपने मन वाणी कर्म को बाबा की सेवा में समर्पित करें, तो आप देखो क्या से क्या बन जाएंगे, क्या जीवन बन जाएगी, क्या अपना परिवार बन जाएगा और क्या ये भारत बन जाएगा, क्या विश्व बन जाएगा। इसलिए जो बाबा कहते हैं कि आप विश्व सेवाधारी हो, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, भले कोई एक छोटे गांव में भी है लेकिन उस गांव में रहते हुए भी बाबा की याद में अच्छी तरह से अगर अपना मन लगाते हैं, उसके प्रकंपन सारे विश्व को परिवर्तन करने में मदद करते हैं। तो ऐसे विश्व सेवाधारी बन के बाबा के कदम पे कदम रख करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम, सभी थोड़ा अपने अपने स्थान पर सीधा बैठें। बहुत जरूरी किसी को उठना हो उठ सकते हैं, लेकिन बाकी जब तक मेडिटेशन चले, योग चले, तो शांति से बैठें। और आज के दिन विशेष अव्यक्त वतन में बाबा के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करें। विशेष ब्रह्मा बाबा के सामने अपनी फरिश्ता ड्रेस में ही बाबा को देखें, नयन मुलाकात करें और वरदान प्राप्त करें। Me?